نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تسر وتمم بالخير سبق نمبر 151 آیت نمبر 19 سے 31 سورة الكهف لیسن نمبر 151 آیت نمبر 19-31 سورة الکہف آیات پہ جانے سے پہلے تھوڑا سا سبق کا خلاصہ جیسا کہ سورة الکہف کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا تھیم دنیا کی محبت جس کو دجل کہا گیا اور اس کے پیچھے پڑھنے والے لوگ حق کے راستے میں قربانیاں نہیں دے پاتے اس وقت جو چیز ہمارے سبق کے اندر کنٹینیو ہو رہی ہے وہ اصحاب کہف کا قصہ ہے ہم نے پچھلے حصے میں دیکھا کہ کس طرح وقت کے رواج سے مختلف سمت میں جانا ان کے لیے تو ممکن بنا لیکن بہت ساروں کے لیے ممکن نہ رہا کیونکہ انہوں نے حق کے مقابلے میں مصلحت والا رویہ قبول نہیں کیا اس کے برعکس وہ لوگ جو حق کو حق تو مانتے ہیں دل سے بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں لیکن وقت پڑنے پر مصلحتوں کا شکار ہو جاتے ہیں ایسے لوگ پھر حق کے لیے سٹینڈ نہیں لے پاتے پچھلے سبق میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے کائنات کو ان کا مددگار بنا دیا یہ اشارہ تھا کہ جب کمزور انسان تم سے روٹھتے ہیں تو اللہ مضبوط چیزوں کو بڑی بڑی چیزوں کو تمہاری مدد میں لگا دیتا ہے آج کے سبق میں جو چیز ہمارے سامنے ہے وہ ہے کہ جب ایک انسان حقیقت میں اندر سے ہدایت کی طلب رکھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو کیسے جما دیتا ہے آج ہم ان کے 300 سے زائد سال جاگنے کے بعد کے حالات کو دیکھیں گے اور اس میں بھی دیکھیں گے کہ لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ قربانیاں کرنے کی بجائے قربانیاں کرنے والوں کی یادگاریں قائم کر کے آخر پھر انہی کے گرویدہ ہو جاتے ہیں پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا قبروں پر مسجدیں بنائی جا سکتی ہیں اور اس کے بارے میں اسلام کا کیا نقطۂ نظر ہے پھر آج کے موضوع میں ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے بیکار کی بحثوں کو چھوڑ دو آج ہمارا کلچر بحث کلچر بن چکا ہے جس کو بڑے پیار سے ہم نے ڈسکشنز اور ڈائیلاگز اور تبصروں کا نام دیا ہوا ہے اور گھنٹوں کے اعتبار سے لوگ ٹی وی پہ وقت ضائع کرتے ہیں صرف تبصرے سنتے ہوئے اسلام اس کے بارے میں بہت ہی کلین اینڈ کلیئر ہے پھر دوسری چیز یہ ہے جو آج کے سبق میں انشاءاللہ کی اہمیت اور دوسری بات کہ جب انسان کچھ چاہتا ہے تو وہ نہیں ہوتا تو اس سے اللہ اس کو کیا سکھانا چاہتا ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے حالات آتے ہیں کہ ہمیں خود نہیں پتا ہوتا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے ہمیں حکمتیں نہیں سمجھ آتی لیکن انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم اس ٹاپک پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ جو میں چاہتی ہوں وہ نہیں ہوتا تو اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چاہت کیا ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر اچھی صحبت کے فائدے اچھی صحبت یعنی انسان جب اچھے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے اور بری صحبت کے نقصانات اور پھر آخر میں آج کے سبق میں جنت اور جہنم کی جھلکیاں کہ ماننے والے استقامت پہ چلنے والوں کو کیا ملتا ہے اور جو اس سے مختلف رہتے ہیں ان کو کیا ملتا ہے آئیے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ جو استقامت اصحاب کہف کو دی وہ ہمیں بھی عطا کرے اور ہم اللہ کے دین کو حق اور سچ ماننے کے بعد پھر اس کے لیے قربانیاں دینے کے لیے بھی تیار ہو جائیں تفسیر دیکھیں گے آیت نمبر 19 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں ایسے لگ رہا ہے کہ اٹھائے جانے کا بس یہی مقصد تھا کہ ایک دوسرے سے پوچھیں حالانکہ یہاں مراد کیا ہے کہ جو ہی اٹھے ہوش آئی تو فطری طور پر جب بھی انسان سو کر اٹھتا ہے تو ایک دم پوچھتا ہے میں کتنی دیر سوئی کیا ہوا کتنا ہو گیا اور جتنی گہری نیند سوتا ہے نا اتنے وقت کا احساس کم ہو جاتا ہے کبھی آپ بہت تھک کے سوئے ہوں اور ایک اور چیز یہاں نوٹ کیجئے گا بہت ہی خوبصورت ہے اور وہ کیا کہ جب انسان کسی مقصد کی دھن میں لگا ہوتا ہے نا تو بھوک پیاس نیند آرام ان سب چیزوں سے بے نیاز ہوتا ہے کئی دفعہ آپ نے لوگوں کو قربانی اور جہاد کرتے دیکھا ہوگا شادیوں کے دنوں میں پھر بعد میں کہتے ہیں میں تو 2 راتوں سے نہیں سوئی میں تو 4 دن سے نہیں سوئی بس یہ ہوا لیکن جو ہی وہ موقع ختم ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے लंबी तान के सोते हैं, फिर फोन भी नहीं अटेंड करते किसी का, कहते हम थकन उतार रहे थे, हम बहुत थके हुए थे। इनके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ है। हक की जिद्दोजहद में इंसान जब लग जाता है ना, उसको बिल्कुल एहसास नहीं होता अपने नफे और अपने नुकसान का। दूसरे देख रहे होते हैं इसका नफा के नुकसान है, इसके खाने का वक्त है कि नहीं, इसके सोने का वक्त है कि नहीं, लेकिन वो एक दौड़ धूप में रहते हैं। और एक ईमान वाले की जिंदगी ऐसी ही होनी चाहिए कि जिसमें वो वाकई अल्लाह सुबहान तआला के दिए हुए इस मिशन को फख्र समझते हुए करे, लेकिन जब वो थक के एक गार में गिरे तो फिर इर्द गिर्द से बेनियाज हो गए, डीप स्लीप में चले गए, जब उठे तो आपस में बातें करने लगे। कुछ इसी किस्म की कैफियात कब्रों से उठते वक्त भी होंगी। पीछे हमने बात पढ़ी थी रुकूद की, राकिदुन की जमायत 18 में, तो मरकद भी कब्र को कहते हैं। और सूरह यासीन की मारूफ आयत है कि मम बासना मिम मरकदीना, किसने उठाया है हमको हमारी मरकद से, हमारी कब्र से, हमारी अब्दी आरामगाह से। तो ये जब उठेंगे तो एक दूसरे से पूछेंगे कि भाई बताओ हम कहाँ रहे। قال قائل منهم, इनमें से कहने वाले ने कहा, कम लबिस्तुम, कितनी देर तुम यहाँ रहे। होना क्या चाहिए था, अगर आप थोड़ा सा अरबी को ग्रामर के नंग में देखें, उर्दू में ही क्या कहना चाहिए था कहने वाले को, कम लबिसना, हम कितनी देर रहे, क्योंकि वो खुद भी था ना। लेकिन अपने ऊपर लेने की बजाय दूसरों के हाल पे इस बात को लेना कि बताओ भाई तुम यहाँ कितना अरसा रहे, इसमें दो इहतमाल हैं, यानी दो पॉसिबिलिटीज हैं। नंबर एक कि ये कहने वाला उन असाबे कहफ में से नहीं था, कोई बाहर का शख्स था, ठीक है, ये ज्यादा चांसेस है इसमें। और दूसरी बात है कि खुद को अलग करके अगलों को अहमियत देना, इसकी भी एक हल्की सी इसमें झलकी मिलती है कि ईमान वाले को अपने से ज्यादा दूसरों की फिक्र होती है। हर वक्त अपने आप को वो हाईलाइट नहीं करता कि हमने कितनी कुर्बानियां दी अल्लाह के रास्ते में। ये एक बड़ा लतीफ नुक्ता है कि तुम कितनी देर रहे, मुराद ये कि जो नेकी हुई तो तुमसे ही हुई है, जो कुर्बानियां दी तुमने दी, मैं तो बस बीच में ऐसे ही बैठ गया। खैर, कालू, वो बोले, लबिसना यौमन औबादा यौम, हम रहे एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा, यानी वन डे और पार्ट ऑफ द डे, कुछ दिन, सुबह शाम कुछ घंटे। कालू रब्बुकुम आलमु बिमा लबिस्तुम, फिर कुछ दूसरे बोले, चलो तुम्हारा रब खूब जानता है कि तुम कितना अरसा रहे। मुख्तलिफ लोग अपनी राय का इजहार कर रहे हैं और ये नेचुरल है, लेकिन इसमें सबसे खूबसूरत जुमला जिसको हाईलाइट कीजिए वो है आखिरी जुमला कि रब्बुकुम आलमु बिमा लबिस्तुम। ये है वो अंदाज जिसका अंदाजा हमें इससे होता है कि जब किसी बात पे बहुत ज्यादा बात करने का भी वही नतीजा निकले जो कम बात करने का, तो बहस में नहीं पड़ना चाहिए, रब हुक्म अल्लाह पे डाल दें। इस्लाम में कीलो काल नापसंदीदा है। कीलो काल पता क्या होता है, इंग्लिश में बड़ा खूबसूरत नाम है इसके लिए, गॉसिप, फन, उसने ये कहा, बातों में बातें, चुटकले। और आप जरा किसी महफिल का हाल देखिए, वहां सिर्फ कीलो काल हो रही थी, बात में से बात निकालना, बात में से बात निकालना। इस्लाम इसको इंतहाई नापसंद करता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह को कीलो काल बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे ही तुमको, आपके, फुलाने का। देखिए, यहाँ जब हम क्लास के एंड पे बात करते हैं कि आप शेयर कीजिए, उस वक्त तो बहुत कम लोग बोलते हैं, लेकिन जो ही किसी दर्स के बाद आप जरा सुभानक अल्लाह पढ़ के माइक बंद करते हैं, तो वही महफिल जहां सबको सांप सूंघा होता है और कोई अपनी राय भी नहीं देना बाज़ पसंद करता, कहने वाला बाज़ शर्मिंदा हो जाता है कि मैंने इसको क्यों कहा, वो बाद में सबसे ऊंची बोल रहे होते हैं। ये होती है कीलो काल, ठीक है। तो यहाँ ईमान वालों का तरीका पता चल रहा है, एक दूसरे को झुटलाया नहीं, बेकार की बहसें नहीं की, बस कह दिया अच्छा भाई जो भी हुआ। आज इसके बरक्स हमारा कल्चर क्या है, आप देखिए कि खास तौर पे हम फारिग लोग, हम फारिग से तो समझते हैं माशाल्लाह कौन से फारिग लोग हैं, हम तो पूरी उम्मत ही फारिग हो चुके हैं। 1947 को हमने सोच लिया था कि अब हम फारिग हो गए हैं क्योंकि पाकिस्तान बन गया, हम बाकियों की बात नहीं करते, अपनी करनी चाहिए। आज आप देखा करें कभी लोगों को बातें करते हैं, आप अपने आज यहाँ से ये टाइम नोट कीजिए, चलिए मंडे तक का टाइम ले लें, वीकेंड भी बीच में आ जाएगा एक, आप जरा अपने घर के मुख्तलिफ औकात में दो बेटों, बाप बेटे, शौहर बीवी बहनों या आने वाले लोगों की बेकार बहसें जरा नोट तो करके। रात जाती बात होती है, इस साल आम नहीं आए। हाँ यार पिछले साल बहुत आए थे। नहीं वो पता ये हो गया, नहीं तुम्हें पता है कि बैन हो गए, नहीं तुम्हें पता है वो इंडिया के हुए हैं। क्यों पता ही नहीं। इस साल मीठे आए, वो कहते नहीं 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 पिछले साल मीठे आए थे। वो कहते नहीं भाई मैंने पिछले साल खाए तो वो तो बहुत ही मीठे थे। तो फिर क्या हुआ, बस फिर आम थे ना। नहीं 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 सर ऐसा नहीं, वो नहीं। अच्छा आप कहते हैं वो याद है हमारे घर, वो परसों एक बंदा आया था। कहते नहीं परसों नहीं चौथा आया था। नहीं भाई मैं कह रहा हूँ परसों आया था। कहते नहीं मुझे पता मैं स्कूल गई थी उस दिन। तो भाई तुम तो चौथे भी दिन गई थी। है क्या, देखिए वो बड़े लोगों की एक मुझे बात याद आती है कि जहां से कुछ निकलना ही नहीं, खोदते रहे जमीन, क्या निकलेगा अंदर से। तो बहसों से कुछ नहीं निकलता। हमारा वक्त बचे, हमारा जहन मुतमईन हो और बहुत सारे झगड़े बच जाए। आज अगर आप और मैं यहाँ बैठ के नियत करें बहस नहीं करनी। अमूमन बहस किससे होती है, अपना अपना बड़ी चेक करें। शौहर से होती है ना, तो चेक करें कि लास्ट टाइम की बहस का नतीजा क्या निकला था। लड़ाई खपाई, वो गुस्से में चले गए, आपका दिमाग, और हम बहस भी समेटते पता किस पे, अल्लाह ही आपको हिदायत दे। यानी मुझे तो दीन ही अब आपको ही दे दे। यकीन करें अगर ये कुरान पढ़ने वालों का मिजाज हो तो फिर घरों में झगड़े ना हो। अच्छा अब आप एक और सवाल मुझसे पूछिए, पूछते तो कोई नहीं है लेकिन पूछें कि अच्छा फिर कैसे बहस को वाइंड अप करें। होती है ना बहस अमूमन कैसे होती है, मसलन आप मुझे कोई केस बताएं मैं आपको डील करके दिखाती हूँ। अमूमन किस चीज पे बहस होती है, कोई एक बच्चों का केस ले लें, कोई भी घर का, जल्दी से क्विकली जी। आप
रात के बहस में मेरे बच्चे के लिए मेडिसिन मैं भी ले आई, अब मैंने देनी शुरू कर दी अपनी मेडिसिन, मेरे मियां कहते मेरी वाली को, अब मुझसे पूछे आप वाली क्यों दूं।
चलिए इनका केस समझ आ गया, हमें बीमार बच्चा था, बच्चा बीमार था, बच्चा बीमार था, ये इनके हस्बैंड कोई दवाई लाए हुए थे, इन्होंने कोई और देनी शुरू कर दी, तो हस्बैंड वाइफ का इस पर झगड़ा शुरू हो गया। ये बहस झगड़ा तो नहीं, हम तो इसको प्यार, ये तो आदत हो गई है, वरना तो फिर झगड़ों की तादाद ही बहुत ज्यादा हो जाए। तो इनके हस्बैंड कह रहे थे कि आप मेरे वाली दवाई दो, फिर आपने क्या कहा आगे से, मैं अपने वाली क्यों ना दू। फिर क्या उन्होंने कहा, फिर मैं अभी लेके आया, मैं भी अभी लेके आई हूँ। फिर एंड फिर बच्चे के साथ क्या हुआ, दोनों ने तो नहीं दे दी। हमारे कल्चर में कहते हैं कि दो घरों का मेहमान भूखा रहता है, और दो हकीमों या दो मौलवियों के दरमियान क्या होता है ये आप सबको पता है। अच्छा चले अब आप लोग बताएं इनको क्या करना चाहिए था। देखिए हम चाह रहे ना बहस ना हो, देखिए तजिया करें, बच्चे की बीमारी के और उसकी नौयत के मुताबिक हस्बैंड की लाई हुई दवा ज्यादा इफेक्टिव है या मेरी, नंबर एक। दूसरी बात है कि सेम दवा आ गई तो फिर असूलन जो पहले से घर में मौजूद थी वो देनी है। तीसरी चीज आप ये देख सकते हैं कि अच्छा अगर दोनों सेम ही चीज ले आए तो एक वापस करनी है, कौन सी वापस करनी आसान है, करीब के स्टोर में उसकी स्लिप है, उसका रिफंड मिल जाएगा। हमेशा तजिया करें, और तजिया करने के लिए खामोश रहना पड़ता है। ये जो हम बोल रहे होते हैं ना कट 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 कट, वो हमारा दिमाग रफ्तार में पता चलता है कि बात हस्बैंड की ठीक थी। एक मैं तो समझी कि शायद आप घर का कोई पुदीना बच्चे को दे रही थी उबाल के, और शौहर कह रहे थे दवा दे दो। बस तो ये भी झगड़े होते हैं ना, बहू चाह रही होती है बेटे को बाजार से दवाई ला के दे, और दादी कहती है इसको धनिया पुदीना उबाल के पिला दो, झगड़े होते ना। हमेशा एनालिसिस करें, और एक बात याद रखें, ये अंदर का किबर होता है कि मेरी बात ठीक है। हमेशा याद रखें कि मैं गलती कर सकती हूँ, मेरी राय गलत हो सकती है, और कुछ भी नहीं आपको समझ आए ना इसी केस में तो आप ये सोचें कि मेरे शौहर तो ज्यादा एफर्ट करके लाए हैं, मैं नहीं कहा था कि लेके आए कि बच्चा बीमार है। अगर आज इनकी लाई हुई दवा मैं नहीं इस्तेमाल करूंगी तो नेक्स्ट टाइम जब मैं इनको कहूंगी कि दवा लाए तो ये नहीं लाएंगे। हमेशा अकल से काम करें, और आप फील करेंगे कि इसके बाद फिर मामला दुरुस्त हो जाएगा, और बच्चा तो दोनों का साझा ही है। और कोई बात बताएं बहस की जी आप। बहरहाल आप देखिए कि अपनी राय को वही वापस लेगा जिसके अंदर आजजी होगी। जब भी कभी कोई बंदा आपके साथ इस तरह का मामला करे, आपको करे, तो आप उसको मजाक में डाल दें, प्यार में बात डाल दें। जैसे मसलन आप देखिए ना कि कोई भी बात हो सकती है, हस्बैंड आपसे किसी बात पे बहस करें तो आपको लग रहा है कि ये किसी बात पे नहीं मानेंगे, तो फिर आप क्या कहें, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। भाई आपको अब किस बात का अफसोस हो रहा है कि आपको अच्छी वाइफ नहीं मिली, आपकी अच्छी बीवी नहीं है। आप कह के देखे, झगड़ा हो रहा हो ना, यानी आप इमेजिन कीजिए कि आप भड़कती हुई आग के ऊपर भी पानी डालते हैं ना, तो वो भी बुझ जाती है। कभी भी जिंदगी में बहस से कोई बात नहीं जीती जा सकती। बाद लोग तबलीग कर रहे होते हैं, बहस करते हैं, मैं कहता हूँ ये है, वो कहते हैं मैं कहता हूँ ये नहीं है, और दोनों की आवाज इतनी ऊंची होती है बाहर दूर कहते हो देखो मजहबी बहस हो रही है। कभी अल्लाह के नबी ने बहसों से बात नहीं की, अगले की साइड पे आ जाए। तो जिंदगी का हुसन क्या है कि वक्त को बचाए, और बहसे करते कौन है आपको बताए, फारिग लोग मसरूफ होते हैं। आप खुद देखें जितना बिजी होती है ना, बच्चे की फालतू बात का जवाब भी नहीं देती, इस वक्त मैं बिजी हूँ मेरे से बात नहीं करो। जब हम बिजी होंगे ना, इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हान व तआला हमारे लिए इन बेकार चीजों को जिंदगी से फिर निकाल ही देगा। फिर उसके बाद देखिए अगली आयत में हमें एक और बहुत ही खूबसूरत सबक मिल रहा है, और वो क्या है, अब वो बात तो खत्म होगी बहस वाली। इसी आयत का अगला हिस्सा, फबअसु अहदकुम बिवारिकिकुम हाजिही इलल मदीना, अब तुम भेजो अपने में से एक साथी को अपने इस चांदी के सिक्के के साथ शहर की तरफ। अब इसका इतना लंबा उर्दू तर्जुमा बन गया, अगर अलग अलग करें, फबअसु बस भेजो, अहदकुम किसी एक को तुम में से, देखिए उर्दू कितनी लंबी है और अरबी में सिर्फ एक लफ्ज है, बिवारिकिकुम, बी मैंने साथ, वरक कहते हैं चांदी के कागज को, याद है आपको पहले लोग खीर के ऊपर वरक लगाते थे, वही है ये भी वरक, लेकिन यहाँ इससे मुराद सिक्के हैं चांदी के, ठीक है। हाजी ही इसको इलल मदीना थी, इसके साथ शहर में, यानी कुछ सिक्के अपने साथ जो वो ले आए हुए थे और वो भी कार में ही रह चुके थे, तो उनको देकर कहा कि भेजो इसको किसी को कि शहर में से खाना लेके आए, लेकिन खाना कौन सा लाएगा, अज़का पाकीज़ा। ये है मोमिन का मिजाज, हम भला क्या जुमला बोलते हैं, जब बहुत भूखे हो जो मिले ले आओ, गंद बुला ले आओ, दही बल्ले ले आओ, मक्खियां बैठी हैं झाड़ लेंगे, कुछ नहीं होता, खा लें बस खा लो, बड़ी सख्त भूख लगी है, जान निकल रही है। नहीं, मोमिन हर हाल में पाकीजगी को नहीं छोड़ता, ठीक है। और ये जो लफ्ज ना फल यंजुर, बस चाहिए कि देखे, अय्युहा, अय्युहा में हा क्या है, अयु मैंने कौन, हा इसका, किसका, बस्ती का, पीछे बस्ती की बात है ना, मदीना, यानी मदीना की तरफ इशारा हा में, कि इस बस्ती का सबसे पाकीजा खाना कौन सा है, ले आओ और देखो, फबल यतलत्तफ, वो नरमी का मामला करे। आपके अक्सर लोगों के कुरान पाक में ये लफ्ज जो भी मैंने अदा किया, ये मोटा लिखा होगा, लफ्जों के एतबार से आज आपका कुरान नस हो गया, और देखिए कि किस लफ्ज पे कुरान की पीक है, और नसब के ऊपर तो पीक होती है ना चोटी, वल यतलतफ, चाहिए के नरमी बरतो, दीन नरमी का नाम है। हदीस में आता है कि जिसको नरमी दी गई उसको खैरे कसीर दी गई, जिसको अल्लाह ताला ने बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन कर दिया, दिल का नरम कर दिया, वो बहुत ही खुशकिस्मत है। पीछे हमने एक लफ्ज पढ़ा था मिरफका, उसमें क्या था, रिफ्क, तो यहाँ क्या है, वल यतलत्तफ। तो गोया के सूरत कहा में हर जुम्मे में पैगाम दिया जाता है कि अपने मिजाज से सख्ती निकाल दो। बस लोग कॉम्प्लेक्स की वजह से सख्ती करते हैं अपने ऊपर भी दूसरों पे, शो ये करते हैं कि हम बहुत अक्लमंद हैं, जीनियस, जो गलती मुझे पता चलती है वो तो किसी और को पता ही नहीं चलती, ये सब बुद्धू हैं, ये क्या बात को सुनेंगे, इसको तो जो दो ये खा जाता है, मैं बहुत कनिंग हूं, अच्छी आदत नहीं है, भोले बने। हदीस में आता है कि मोमिन भोला भाला होता है, बेवकूफ नहीं होता लेकिन भोला होता है। चंद रिवायतें नरमी के ऊपर, जिसको नरमी में से कुछ हिस्सा मिल गया, इसे दुनिया और आखरत से अपना हिस्सा मिल गया, और जो नरमी से महरूम किया गया वो दुनिया और आखरत के हिस्से से महरूम किया गया। फिर एक और रिवायत है, बेशक अल्लाह ताला नरमी करने वाला है, क्योंकि उसका तो अपना नाम अल लतीफ है, नरमी को पसंद करता है, और नरमी से जो मिलता है वो इसके सिवा से नहीं मिलता। आप देखिए, आप आजमा के देख लें, आपने अपने काउंटर पे गिरे हुए खाने को साफ करना है, हो सकता है आपको स्क्रब लगाना पड़े, सख्ती से साफ होगा ना, हो सकता है आप उसमें वो स्टील वूल यूज करें, जो भी आपका दिल चाहे। लेकिन जब दिल के अंदर कोई हल्का सा वॉल बंद हो जाता है या दिल पे कोई पर्दा आता है, तो डॉक्टर्स उसको कैसे साफ करते हैं? नरम हाथों से। वो भी जख्म है, दिल के ऊपर भी जख्म है और आपके चूल्हे पे भी जख्म है। उसको सख्त हाथ से करेंगे लेकिन दिल को नरम से करना होता है। तो जो चीज नरम हाथों से हो सके उसको सख्त से इस्तेमाल नहीं करते। ये भी मैंने अपने बहुत ही करीबी बड़ों से बात सीखी है कि पहले देखो जो काम नरमी से हो सकता है उसको सख्ती की जरूरत नहीं। कि जब हर वक्त रोब जमाने के मूड में होते हैं ना, और हर वक्त रोब बिकॉज आई एम योर मॉम, बिकॉज आई टोल्ड, बिकॉज बिकॉज नहीं, पहले नरमी इख्तियार कीजिए उसके बाद सख्ती करें। फिर चाहे आपके बच्चे आपको ये कहते फिरे कि पहले तो आप बहुत सॉफ्ट होती थी, अब सख्त हो गई हैं, या पहले तो आपके रूल्स बड़े नरम थे घर में रहने के, अब बड़े सख्त हो गए, इसलिए क्या आप बड़े भी तो हो गए ना। फिर एक और रिवायत है हजरत आयशा के लिए, बहुत ही खूबसूरत, अल्लाह के नबी ने मौका दिया। एक मौके पर हजरत आयशा का समय गुस्सा आ गया था, एक यहूदी ने नबी सल्लम को सलाम अलैकुम की बजाय कह दिया साम अलैकुम, कि नौज़बिल्लाह आपके ऊपर मौत आए तो ये बात सुन के किसको गुस्सा नहीं आएगा। तो हजरत आयशा ने जरा उसके ऊपर गुस्से के साथ कहा कि वालेकुम वगदिब अल्लाह वलानत, कि तुम पे अल्लाह का गजब भी है, तुम पे अल्लाह की लानत भी। तो उस पर अल्लाह के नबी ने कहा आयशा नरमी इख्तियार करो, बेहयाई से बचो, जिस चीज में नरमी होगी वो इसे खूबसूरत बना देगी। आप आजमा के देखिए अपने इर्द गिर्द की चीजों में हमें क्या अच्छा लगता है। कपड़े कैसे अच्छे लगते हैं? नरम। बिस्तर कैसा अच्छा लगता है? और क्या नरम अच्छा लगता है जी? तकिया नरम अच्छा लगता है, तौलिया नरम अच्छा लगता है, और बातचीत नरम करनी कि सुननी? सुननी, करनी तो नहीं है। तो बहरहाल नरमी अख्तियार कीजिए। एक और रिवायत में आपने फरमाया कि आयशा जिस घराने को नरमी अल्लाह ने दे दी उसे खैर मिलकर रहेगी, और जिसको अल्लाह ने नरमी से महरूम कर दिया वहां से खैर चली जाएगी। देखिए कि इख्तियार करना आपका है, अल्लाह ने आपके अंदर दोनों चीजें रखी हैं। हमारे अंदर नरमी भी है और गर्मी भी है। नरमी किस लिए थी? अजनबियों के लिए, जिनको भी तुम दीन में बुलाना चाहते हो। और नरमी थी उनके लिए कि जो अच्छे काम करें। सख्ती होनी चाहिए अपने करीबियों के लिए और उनके लिए जो अभी अंडर ट्रेनिंग है। तो बहरहाल मुझे तो ऐसे ही लगता है, वही जो मैंने पहले भी शायद मिसाल दी थी कि रोटी ऊपर से कुड़कड़ी अंदर से नरम, देखने में लगे क्या क्रिस्पी रोटी है, तोड़े तो ऐसे नरम टूटे, और पता चला कि ऊपर से ढीली लग रही, जब तोड़ी तो दांत भी साथ टूटते टूटते बचा। कुछ लोगों का हाल यही होता है, ऊपर से बड़े नरम, दिल के कठोर गंदा दिल होता है, और कुछ का ऑपोजिट हाल है, ऊपर से बड़े सख्त लगते हैं। नबी सल्लम के बारे में सहाबा किराम यही कहा करते थे कि जो आपको दूर से देखता है यानी कम मिलता या आपके साथ कभी कभी कंट्रैक्शन होता, वो आपको बहुत सख्त समझता, क्योंकि आपकी शख्सियत में एक रोब था, पर्सनैलिटी थी, और आप इसी तरह हर वक्त लोगों के साथ मामला भी नहीं करते थे कि बेतकल्लुफ हो। लेकिन जितना कोई आपके करीब जाता जाता उसको ऐसे लगता कि मेरे साथ तो अल्लाह के नबी दूसरों से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। तो लिहाजा वल यतलतम, और चाहिए कि लुत्फ का इजहार करो, नरमी का मामला करो। ये किसको कहा जा रहा है, किससे कहा जा रहा है, जो खाना लेने जा रहा है? क्यों कहा नरमी से बात करना? क्योंकि अगर जिन लोगों के पास तुम जा रहे हो ये लोग तुम्हें पकड़ने का इरादा करें, तो फिर उनको तो नहीं पता था 300 साल गुजर गए, वो तो उसी नींद पे सोए थे कि बादशाह दकिया नूस हमारा दुश्मन है और बस हमें पकड़ लेगा। तो यहाँ लफ्ज लुत्फ के दो मानी भी समझ लीजिए। अगर आपका दिल चाहे तो अल्लाह के अस्मा और हुस्ना में अल लतीफ की तफसीर भी जाके सुन लें, दोनों बड़ी डिटेल से बयान हुए हैं। उसमें एक मतलब होता है नरमी करने वाला, जिसको हम इतनी देर से देख रहे हैं, ठीक है। दूसरा लुत्फ का मतलब होता है बारीक बीन, जिसको आप कहना चाहिए मीन मेघ के साथ काम करने वाला, हुस्ने तदबीर, समझ बूझ कर काम करने वाला। यहां वो उस आदमी को भेज रहे हैं कि देखो नरमी भी इख्तियार करना और जरा देख के खाना मांगना, कहीं किसी को हमारा पता ना चले। यहां से क्या पता चलता है कि किसी ऐसे शख्स को ही बाहर के कामों में भेजना चाहिए जिसमें नरमी भी हो, बात करने में भी अच्छा हो, और दूसरी बात है कि वो मौका महल देख के बात करना चाहे, बाल साहब आपने जो इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, अगला बंदा उससे बिल्कुल ऑपोजिट बात करके आता है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा सका कि होता क्या और किस तरह। अल्लाह अकबर। इसके बाद जो अगला ला मारा ना, इससे निस्फ सानी शुरू होता है। तो डर क्या था दिल में, वला युश इरन नबिकुम अहदा, और वो आगाह ना कर दे तुम्हारे बारे में किसी को। यहाँ फिर देखिए, तुम्हारे बारे में हमारे नहीं है, यानी एक्स्ट्रा केयरफुल। यहाँ से आपको हदीस समझ आएगी कि मोमिन कैयस होता है, इधर उधर देख कर बात करता है। अल्लाह के नबी सल्लम इतने मुख्तार थे कि बगैर सोचे समझे बात भी नहीं करते थे, मामला भी नहीं करते थे। बड़े लोग क्या कहा करते थे, पहले तोलो फिर बोलो। यही बात है कि देखो बाहर जाके कहानियां ना सुनानी शुरू कर दो। यहाँ से एक अमल का नुकता नोट कीजिए। बाद दफा हमें किसी काम पे भेजा जाता है, इज्तमाही काम, कोई दीन का काम है, किसी भी किस्म का लोगों के साथ इन्वॉल्व है, बहुत सारी बातें आपको उसमें ऐसी पता हो सकती हैं जो उस काम का चूंकि हिस्से हैं तो आपको बताऊं। कुछ लोग बाहर खड़े होते हैं किसी काम गए पूछने, दूसरों ने कोई एक बात पूछी सारी कहानी खोल दी। ये नापसंदीदा अमल है, बल्कि अल्लाह के नबी का अमल अगर आप सीरत में देखें, आखिरी वक्त तक लोगों को नहीं पता चलता था कि अल्लाह के नबी सल्लम क्या करेंगे। आपने फरमाया जिसने अपने मामलों को खुफिया रखा वो महफूज रहा। आपका किसी को नहीं बताता था आप कल क्या करेंगे कैसे करेंगे। ये एक उस वक्त के हालात की जरूरत भी थी और ये एक बहरहाल मसनून अमल भी था। तो बहरहाल वला युशिरुन नबिकुम अहदा, यहां से एक अमल का नुक्ता लेके आगे चलते हैं कि दुश्मनों से बचने के लिए तदबीर से काम लेना चाहिए, जोश से नहीं और नारों से नहीं।